ये जितने रिवर्स है, बड़े बड़े सी समंदर है, लेक्स है, पानी इनका बह रहा है। ये पानी रुकना भी चाहे इसमें रुकने की ताकत नहीं। ये बड़े बड़े माउंटेन्स इतने ऊंचे ऊंचे नजर आते हैं, एक जगह पर खड़े हैं, ये खुद से हिलना भी चाहे इनमें हिलने की ताकत नहीं। ये जमीन जिसे अल्लाह ने इतनी मजबूत और इतनी सख्त बनाया कि बड़े बड़े टावर्स इसके ऊपर खड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारतें इसके ऊपर खड़ी हुई है, इतनी मजबूत ये जमीन है। लेकिन वो कौन सी ताकत है कि हम जब जमीन में सीड्स को डाल देते हैं, एक छोटा सा प्लांट उगता है, लेकिन उस प्लांट में इतनी ताकत है कि वो जमीन को चीर देता है और वो प्लांट जमीन से ऊपर आ जाता है। कौन सी वो ताकत है कि जिस जमीन पर इतने बड़े बड़े टावर्स खड़े हो, इतनी मजबूत ये जमीन है, और वो छोटा सा प्लांट जिसे हम हाथ में मसल सकते हैं, उसमें वो पावर आ जाता है कि वो जमीन फटती है, प्लांट ऊपर आता है और पूरा दरख्त खड़ा हो जाता है। वो कौन सी जात है कि जब हमारे गार्डन में मुख्तलिफ किस्म के हम ट्रीज लगा दे, फ्रूट्स के भी, फ्लावर्स के भी, हर एक अलग अलग ट्री है, लेकिन वो कौन सी ताकत है? जमीन तो एक ही है, सॉइल तो एक ही है, गार्डन तो एक ही है, पानी तो एक ही है, लेकिन इस पर एप्पल नजर आता है, उस पर मैंगोज नजर आते हैं, इसमें से रोज निकलता है, वहां से सनफ्लावर बाहर आता है। वो कौन सी जात है जो ये इनकलाब पैदा करती है? उसी जात का नाम अल्लाह है। ये आसमान में बेशुमार सितारे मौजूद, सूरज और चांद मौजूद, लेकिन कभी आपने ये न्यूज सुना कि आज मिस्टर सन और मिसेस मून में एक्सीडेंट हो गया? कभी ये खबर मिली आपको? कभी नहीं। सितारे अपनी जगह पर, सन अपनी जगह से राइज होता है और सेट हो जाता है, सनराइज सनसेट वजूद में आता है, सब कुछ टाइम पर हो रहा है। कोई ना कोई जात मौजूद है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल किए हुए है, जिससे हमें अल्लाह की रबूबियत का इकरार नसीब होता है और हमें यकीन बैठता है। हजरत शाह अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे कि खुदा की रबूबियत के लिए और अल्लाह के वजूद को मानने के लिए हमें न किसी किताब की जरूरत है, न किसी लॉजिक मंतिक और फलसफे की जरूरत है, हम तो एक मामूली चीज से भी ये प्रूव कर सकते हैं कि वाकईतन खुदा की जात मौजूद है। और शाह अताउल्लाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान की आयत पढ़ा करते थे, वो इन लकुम फिल अनआम इबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फर्सि व दमिन लबनन साइगल खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। हजरत शाह अताउल्लाह साहब फरमाते कि जरा इस दूध को देखो, जो दूध तुम पीते हो, ये दूध कहां से आता है? उस भैंस के थन से निकलता है, उस बफेलो के थन से निकलता है, जो भैंस बिल्कुल काले रंग की है, जिस भैंस की पूरी बॉडी के अंदर रेड ब्लड घूम रहा है, पूरी बॉडी में लाल खून है, कलर उसका काला है, और उस भैंस के बदन से वो गंदा गोबर निकलता है जिसमें से बदबू आती है। तो भैंस का कलर काला, अंदर का खून लाल, गोबर उसका बदबूदार, लेकिन उसी भैंस के थन से वो सफेद रंग का दूध निकलता है जिसमें न भैंस का रंग है, न उसके खून का रंग है, न उसकी गलाजत और बदबू का असर है, ऐसा दूध निकलता है। कुरान कहता है जो प्योर है, जो आसानी के साथ गले में डालो, पेट में उतर कर डाइजेस्ट हो जाता है। तो कौन सी वो जात है कि जो इस दूध को उस जानवर के बदन से निकालती है, उसके थन से निकालती है? मानना पड़ेगा कोई वो जात है जिसकी ये कारीगिरी है, और उसी जात को अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं। एक कलमा पढ़ने वाला जब एक बार कलमा पढ़ता है, वो इतनी बड़ी बड़ी कारीगिरी के बारे में गवाही दे देता है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनसे किसी ने पूछ लिया कि हजरत जरा खुदा की मारिफत के बारे में और खुदा के वजूद के बारे में कोई बात प्रूफ करके बताइए। जवाब सुनना, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने एक गुंबद देखा है, गुंबद एक डोम देखा है, जो डोम जिसकी दीवार व्हाइट कलर की है, सफेद कलर का एक डोम मैंने देखा, और उस डोम में न कोई विंडो है न कोई डोर है, न दरवाजा है न खिड़की है, बल्कि उस पूरे डोम में जो व्हाइट कलर का है, जिसकी वॉल्स व्हाइट कलर की है, एक छोटा सा होल भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल पैक चारों तरफ से, एक सुराख उसके अंदर नहीं। ऐसा डोम मैंने देखा और न उसके अंदर हवा जाती है, न उससे हवा बाहर निकलती है, न उसमें पानी जाता है, न उससे पानी बाहर निकलता है, न उसमें गिजा जाती है, न उससे गिजा बाहर निकलती है, चारों तरफ से बंद है, एक होल नहीं, बिल्कुल बंद वो डोम है। अचानक उस डोम की दीवार क्रैक होती है, उस डोम की दीवार टूटती है और अंदर से एक जानवर निकलता है जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, जो चलने लगता है, जो दाना चुगने लगता है, जो दुश्मनी भी करता है, दोस्ती भी करता है और बिल्कुल सारे लोगों के साथ में वो खेलने लगता है। उस शख्स ने पूछा, हजरत ये आपका डोम, ये जानवर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कहा, अरे खुदा के वजूद को देखना है और खुदा की कुदरत को देखना है तो उस अंडे को देख जो मुर्गी देती है, मुर्गी से जो अंडा निकलता है, ये वो व्हाइट दीवारों वाला डोम है जिसमें न खिड़की है न दरवाजा है न होल है, लेकिन उसी का, उसी अंडे का छिलका जब टूटता है, जब वो मुर्गी उस अंडे पर बैठकर उसे हैच करती है, मुर्गी उस अंडे को सीती है, उर्दू में हैच करने को कहते हैं अंडे को सीना, तो जब वो मुर्गी उस अंडे को हैच करती है, सीती है, अंदर से एक बच्चा निकलता है, वो चिकन, वो छोटा सा बच्चा कितना खूबसूरत होता है, उसकी बोली खूबसूरत होती है, वो निकलते ही भागने लगता है, वो निकलते ही दाना चुगता है, वो दुश्मनी भी करता है, दोस्ती भी करता है। अरे कौन सी वो जात है कि इस बंद अंडे में जहां हवा भी नहीं जा सकती थी, कोई चीज अंदर नहीं घुस सकती थी, कौन सी वो जात है जिसने अंदर से एक जीते जागते जानवर को निकाला? ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो क्या है? ये अल्लाह का वजूद नहीं है तो क्या है? वो अल्लाह ही की जात है कि जिसने ऐसी जगह से एक अंडे से उस बच्चे को निकाला और उसे जिंदगी बख्श दी। और मैं तो ये कहा करता हूं कि ये जो अंडा है मुर्गी का, मुर्गी इसके ऊपर बैठ जाती है, अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बतख के अंडे होते हैं, डक के, वो भी मुर्गी के नीचे रख दिए जाते हैं और मुर्गी उन अंडों पर भी बैठ जाती है और एक ही टाइम में उसी मुर्गी के हैच करने से चिकन भी बाहर आ रही है, वो डकलिंग भी बाहर आ रही है। वो याद होगा, मुझे याद है अच्छी तरह, बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, द अगली डकलिंग एक स्टोरी थी बचपन में, मुझे याद पड़ता है, पढ़ी थी मैंने, हमारे बच्चों ने भी पढ़ी होगी, द अगली डकलिंग। उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो एक डक थी और उसने कुछ अंडे दिए, उन अंडों के अंदर एक बड़ा अंडा भी मौजूद था, वो डक उसके ऊपर बैठ गई और सारी डकलिंग बाहर निकली और वो जो बड़ा अंडा था उसमें से बहुत ही बदसूरत बतख बाहर निकली और सारे लोग उसे चिढ़ाने लगे कि ये तो अगली डकलिंग है, ये तो बहुत बदसूरत है। वो बिचारी बहुत मायूस हो गई और वो मायूस होकर सबको छोड़कर चली गई और वो बहुत गम करती थी कि मैं बदसूरत हूं। सारे लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे जिसको अगली डकलिंग कहा जाता था वो बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, यहां तक कि जब वो बड़ी हो गई, एक मर्तबा उसने स्वान को देखा, हंस को देखा जो उड़ रही थी, तो ये उनको देखने लगी, ये कितने खूबसूरत है, बिल्कुल व्हाइट, अल्लाह ने कितना खूबसूरत पैदा किया। यही सोचते सोचते वो अगली डकलिंग अपना चेहरा उस दरिया के अंदर देखती है तो उसे नजर आता है कि मैं भी वैसी सफेद हूं, मैं भी बिल्कुल खूबसूरत हूं। फिर पता चला कि जिसे लोग अगली डकलिंग कहते थे वो बतख नहीं था, वो तो स्वान का बच्चा था, हंस का बच्चा था। ये एक स्टोरी बचपन में पढ़ी थी, तो मैं उस दिन सोच रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुर्गी है, मुर्गी के नीचे जो अंडे रखे हुए हैं उसमें दो चार बतख के अंडे भी रख देते हैं। अब जब वो हैन उसको हैच करती है, चिकन भी बाहर आ रही है, डकलिंग भी बाहर आ रही है, एक ही मुर्गी ने हैच किया है, चिकन भी निकली, डकलिंग्स भी निकली। लेकिन आप अपनी आंखों से देखेंगे